लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर
और फादर संजय दिलीप एक्का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है। रिश्वत देने वाला समझता है कि घूस जादू का पत्थर है, वह जहां भी जाता है सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है, चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय के 7 से लेकर 10 तक के पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इस तथ्य के प्रति हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि राजा सुलेमान के नीति वचनों में एक दुष्ट और विधर्मी व्यक्ति को मूर्ख बताया गया है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट भाषण देने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसकी बातचीत उसके मन में भरे कपट उसके उत्कृष्ट भाषण को झुटला देती है। सच ही तो है, जो व्यक्ति खुद शिक्षा से बैर रखते हैं उनका ईश्वर की विधियों से क्या वास्ता। जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ के 50वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, ईश्वर विधर्मी से कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। वस्तुतः उक्त पदों में दो बातों को बहुत ही बेतुकी बताया गया है। प्रथम यह कि बिना प्रतिष्ठा वाले लोग ही तानाशाह होते हैं, वे स्वतः को सब कुछ मान बैठते जबकि उनके पास समझदारी और विवेक की कमी होती है। वे अलंकृत भाषा बोलने का ढोंग रचते हैं जबकि उसके अर्थ का उन्हें कोई पता नहीं होता। इसी प्रकार जिनके हाथ में पैसा होता है वे सोचते हैं कि वो इससे सब कुछ कर सकते हैं। वे पैसे को कीमती पत्थर की तरह महत्व देते हैं, मानो वह उनका आभूषण हो, मानो उसी से उन्हें शक्ति मिलती है। वे इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि घूस देकर और रिश्वत लेकर वे कुछ भी कर सकते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि जो कुछ वे करते हैं उसका दुष्प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। वे न्याय को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते, किंतु इस रास्ते पर उनका भटक जाना सुनिश्चित है। 9वें और 10वें पदों में लेखक कहता है, अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है, चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। श्रोताओं, संबंधियों और पड़ोसियों के बीच शांति बनाए रखने का तरीका यह है कि हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, और यदि अन्यों की सुरक्षा के लिए कोई बात बिल्कुल जरूरी नहीं तो उस बात को उन्हें न ही बताया जाए तो उचित होगा। उस बात पर ध्यान देना कि अन्यों के खिलाफ क्या कहा गया और क्या किया गया तथा उसके बारे में चुगली करना मित्रों में फूट डालना है, जबकि किसी गलती के लिए क्षमा मांग लेना अच्छे निर्माण की पहली ईंट हो सकती है। मित्रों को अलग करने और उनमें मतभेद पैदा करने से बढ़कर दुष्टता कोई और नहीं हो सकती। न चाहकर भी मन में कड़वाहट पैदा हो जाती है और जुनून उत्तेजित हो जाता है, जबकि शांति का सर्वोत्तम तरीका क्षमा या विस्मरण का कार्य है। फिर लेखक कहता है कि मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। श्रोताओ, मूर्ख की ढेर सारी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि समझदार का एक ही शब्द व्यक्तियों के मनों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। दूसरी ओर समझदार की कोमल डांट न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति के सिर में प्रवेश करेगी, बल्कि उसके दिल में भी प्रवेश कर जाएगी। समझदार की बात किसी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम होती है।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा।
आगे सूक्त ग्रंथ के 17वें अध्याय के 11 से लेकर 14 तक के पदों में लेखक कहता है, दुष्ट विद्रोह की बातें ही सोचता रहता है, उसके पास एक निर्दय अधिकारी भेजा जाएगा। मूर्खता के आवेश में उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उस रीछनी से मिलना अच्छा है जिसके बच्चे चुराए गए हैं। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है, प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद कर दो। श्रोताओ, विद्रोह की सहज प्रतिक्रिया दुष्टों की होती है, ज्ञानियों की नहीं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सदैव विरोध की भावना से प्रेरित रहा करते हैं, वे विरोधाभास के लिए विरोधाभासी होते हैं। एक विद्रोही व्यक्ति स्वभाव से ही क्रोधी होता है, और इसीलिए वह सार्वजनिक शांति भंग करने के सभी अवसरों की खोज में लगा रहता है। लेखक कहता है कि ऐसे विद्रोहियों के विरुद्ध एक क्रूर और निर्दय अधिकारी भेजा जाएगा। वस्तुतः श्रोताओं, जो लोग बार बार विद्रोह करते हैं, वे स्वतः अपने पास क्रूर प्रतिशोध को आमंत्रित करते हैं। अस्तु, जब उनके पास दुष्ट मनुष्य आए तो उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ में निहित निर्दय अधिकारी से तात्पर्य उस युग में राजा द्वारा दुष्ट व्यक्ति को दंडित करने के लिए भेजा गया सिपाही हो सकता है, किंतु इसका अर्थ तूफान, महामारी का प्रकोप या किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हो सकता है। फिर लेखक कहता है, मूर्खता के आवेश में उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उस रीछनी से मिलना अच्छा है जिसके बच्चे चुराए गए हैं। यहाँ उन्मत्त मूर्ख अथवा दुष्ट व्यक्ति के बजाय क्रुद्ध रीछनी अथवा भालू के बच्चे की माँ से मिलना अधिक उत्तम बताया गया है। सच ही तो है कि अपना बच्चा खो देने पर माँ भालू कुख्यात रूप से क्रोधित और खतरनाक हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कोई भी समझदार व्यक्ति भालू से आमना सामना नहीं करना चाहेगा। तथापि सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है कि उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा क्रुद्ध भालू से मिलना ही अच्छा है। सार यह है कि मूर्ख की संगति किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होती, क्योंकि अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के बीच एक मूर्ख व्यक्ति भालू से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे मूर्खों से दूर रहने में ही बुद्धिमानी है। 13वें और 14वें पदों में लेखक सचेत करता है, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है, प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद करो। श्रोताओ, यहाँ एक दुर्भावनापूर्ण शरारती व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया गया है जो अपने मित्रों के प्रति कृतज्ञ रहता है। वह दया के प्रति असंवेदनशील हो जाता और भलाई के बदले बुराई का प्रतिपादन करता है। प्राचीन व्यवस्थान के दाऊद को भी ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ा था जो उनका अहित चाहते थे, किंतु दाऊद ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। स्तोत्र ग्रंथ के 109 भजन के 3रे और 4थे पदों में हम पढ़ते हैं, उन्होंने शत्रुतापूर्ण शब्द कहते हुए मुझे घेरा और मुझ पर अकारण ही आक्रमण किया। उन्होंने मेरी मित्रता के बदले मुझ पर अभियोग लगाया, किंतु मैं प्रार्थना करता रहा। इसीलिए श्रोताओं, भले ही दुष्ट का सामना करना पड़े, हम प्रभु ईश्वर में भरोसा करना नहीं छोड़ें। फिर झगड़ा शुरू करने के दुष्परिणामों की ओर भी लेखक ध्यान आकर्षित कराता है। झगड़े को शुरू होने के बिंदु पर ही बंद कर देना चाहिए, अन्यथा बात का बतंगड़ बन जाता है और लोगों में फिजूल ही वैमनस्यता और शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अस्तु, व्यक्ति विद्रोहों से, मूर्खतापूर्ण कृत्यों से, प्रतिशोध की भावना से और झगड़ों से दूर रहे तथा हर स्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करे।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा। तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, मेरा प्रभु है शरण शिला जो शरणागत का डेरा, वही ढाल वह परम सहायक महादुर्ग है मेरा, सभी भांति गौरव गायन का अधिकारी है स्वामी, जो ही करूं पुकार उसे मैं, रक्षा करे सदा ही, लहरा कर जब मृत्यु पहुंचती घेरा मुझ पर डाले, बढ़ती आती घातक लहरें।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। बुधवार को आम दर्शन समारोह के उपरांत संत पापा फ्रांसिस रोम के जेमेल्ली अस्पताल गए, जहां उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक ने कहा, संत पापा अच्छे हैं, वे चेतना की स्थिति में हैं, उन्होंने मुझसे हंसी मजाक भी की। जेमेल्ली अस्पताल के शल्य चिकित्सक सेर्जो अल्फियरी ने, जिन्होंने बुधवार दोपहर को संत पापा फ्रांसिस का ऑपरेशन किया, संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शल्य चिकित्सा में कोई कठिनाई नहीं हुई और वे आशा करते हैं कि संत पापा फ्रांसिस जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह आपातकालीन ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह पुरानी सर्जरी के कारण होने वाले एक इंसिजनल हर्निया के उपचार हेतु की गई। संवाददाताओं के सवाल के उत्तर में चिकित्सक ने कहा, यदि यह आपातकालीन स्थिति होती तो हमने उनका ऑपरेशन परसों ही कर दिया होता, जब वे CAT स्कैन हेतु अस्पताल आए थे। अल्फियरी ने कहा कि इंसिजनल हर्निया के कारण निरंतर एक दर्द की स्थिति बने रहने के कारण संत पापा के चिकित्सक दल ने उनका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमने मध्य आंत के छोरुंग और पार्श्विक पेरिटोनियम के बीच कई मजबूत असंजन पाए, जिसके कारण उपरोक्त लक्षण दिखाई दे रहे थे। सर्जन ने बतलाया कि असंजनों को हटा दिया गया और हर्निया दोष के उपचार में एक प्रोस्थेटिक जाल की सहायता से प्लास्टिक सर्जरी की गई। डॉक्टर अल्फियरी ने जोर देते हुए कहा, शल्य चिकित्सक और विसंगन में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि संत पापा की प्रतिक्रिया अच्छी रही। संवाददाताओं के सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन से पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने हेतु कम से कम अस्पताल में 7 दिनों का समय लगता है। संत पापा की उम्र को देखते हुए हम सभी तरह की सावधानियां बरतेंगे और शल्य चिकित्सक के उपरांत समय के प्रबंधन में जरूरी निर्णय लेंगे। वैटिकन प्रेस के प्रवक्ता मतेयो ब्रूनी, जो प्रेस विज्ञप्ति का संचालन और प्रबंधन कर रहे थे, इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि संत पापा फ्रांसिस के सभी कार्यक्रम आगामी 18 जून तक स्थगित रहेंगे।
वैटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा कि हम संत पापा को अपनी प्रार्थनाओं का सहचर्य प्रदान करते हुए आशा करते हैं कि सभी चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी। उक्त बातें कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने जुबली 2025 हेतु इन्फो पॉइंटल के उद्घाटन उपरांत संवाददाताओं के साथ अपनी वार्ता के दौरान कही। कार्डिनल पारोलिन ने बुधवार को विया देल कॉन्सिलियासियोने में इन्फो पॉइंट यूबिलियम 2025 का उद्घाटन किया, जहां आगामी जयंती में भाग लेने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सूचना और स्वागत का केंद्र तैयार किया गया है। उद्घाटन एक प्रार्थना और सुसमाचार पाठ से शुरू हुई, जिसमें कार्डिनल पारोलिन के संग महाधर्माध्यक्ष रिनो फिसकेला सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्म पीठीय विभाग के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। कार्डिनल जुप्पी की कीव यात्रा पर पूछे गए सवाल के उत्तर में कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा, उनका मिशन एक सहयोगिता से उत्प्रेरित है, एक योगदान जो परम धर्म पीठ शांति के लिए कर सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 13 मई को निजी भेंट के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संत पापा से जिन बातों को साझा किया था, उनके संबंध में कुछ भी नया मोड़ नहीं आया है। अपनी इस भेंट में यूक्रेन के नेता ने संत पापा और परम धर्म पीठ से यह निवेदन किया था कि वे यूक्रेन के निर्वासित बच्चों को रूस से लाने में मदद करें। कार्डिनल जुप्पी की मास्को की संभावित यात्रा के बारे में कार्डिनल पारोलिन ने कहा, हमें उनसे मिलकर इसके बारे में देखना होगा कि आगे क्या किया जा सकता है। संत पापा के विचारों को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, यह विचार दो राजधानियों में किए जाने वाले एक मिशन के स्वरूप शुरू हुई, अतः मास्को की संभावना खुली रहनी चाहिए। अभी दोनों कार्डिनलों के बीच एक मिलन संगोष्ठी बाकी है, जो जुप्पी के लौटने पर होगी और निश्चित रूप में इसकी जानकारी संत पापा को दी जाएगी। उधर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र देशों के दो संघों, विश्व स्वास्थ्य संघ और खाद्य और कृषि संघ, नीति निर्धारकों और अन्य विभागों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली स्थापित करें। इस साल अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस ने खाद्य सुरक्षा प्रथाओं और उनके मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। इस संबंध में WHO की सहायक महानिदेशिका डॉक्टर मरिया नेरिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दूषित भोजन के सेवन के कारण साधारण से लेकर करीब 200 से अधिक गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। उन्होंने कहा, हम बीमारी की स्थिति में ही केवल खाद्य सुरक्षा की बात सोचते हैं, हमें चाहिए कि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों को पूरी तरह रोका जा सकता है। उधर अमेरिका के बाल्टीमोर में शुरू हुई कैथोलिक संचार सम्मेलन की वार्षिक संगोष्ठी में वैटिकन संचार विभाग के अधिकारी डॉक्टर पॉलो रूफिनी ने संचार माध्यम में कार्यरत लोगों को दिए गए अपने संबोधन में प्रथम शिष्यों की एकता और सहभागिता से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कैथोलिक संचार माध्यमों में कार्यरत व्यावसायिकों से आग्रह करते हुए इस बात की याद दिलाई कि कलीसिया में संचार माध्यम की उत्पत्ति पुनरुत्थान के प्रत्युत्तर में हुई है। उत्तम पत्रिका के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह उत्पादक की बिक्री से संबंधित नहीं है, बल्कि लोगों को एक संबंध और अवसर प्रदान करने से है, जहां वे एक दूसरे के साथ भेंट करते और अपने कृपापूर्ण जीवन की विशिष्ट कहानियों को साझा करते हैं। उधर रूसी कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में एक विशाल बांध के ढहने से हजारों लोगों के लिए बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। बांध का टूटना लोगों के लिए रूसी गोलाबारी के बाद एक नई मुश्किल को जन्म दिया है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।